ஓம் சாந்தி. கிரீஷ் பாய் பரிச்சை தே ரே தே மே சுன் ரா தா, பஹுத் படா சடா கர்கே பரிச்சை தியா உன்ஹோனே. முஜே லக்தா ஹை கி யே ஏக் ஆர்ட் ஹை உன்கே பாஸ், கிசி கோ என்கரேஜ் கர்னே கா, சோ தட் ஐ கேன் பர்ஃபார்ம் பெட்டர் தென் வாட் ஐ குட். ஐசா லக் ரா தா முஜே. லேக்கின் ஆப் ஜானதே ஹை கி பர்ஃபார்ம் கர்னே வாலே கோ ப்ராக்டிஸ் கியே பினா தோ டீக் சே பர்ஃபார்ம் நீ கர் பாதே. ஆப்கி மெடிக்கல் விங் கி கான்ஃபரன்சஸ் ஜித்னி பி ஹோத்தி, மைண்ட் பாடி மெடிசன், மே தேக்தா ஹூ கி ஏக் சே ஏக் படகர் காமயாப் ஹோத்தி, சாஹே யஹா சாஹே பாஹர், பாம்பே மே தூசரே ஸ்தானோ பர். ஓர் உஸ்கா ஸ்ரே கிஸ்கோ ஜாதா ஹை? ஆர்கனைசிங் கமேட்டி கோ ஜாதா ஹை. உன்கே ஜோ பிரசிடென்ட் ஹை டாக்டர் அசோக் மேத்தா, உன்கே ஜேசா என்தூசியாஸம் ஓர் கிசி மே நஹீ ஹை. டாக்டர் பனாரசி கோ தேக்தே ஹை, டாக்டர் பிரதாப் கோ தேக்தே ஹை, டாக்டர் கிரீஷ் கோ தேக்தே ஹை, சபி கே அந்தர் ஏக் ஓர் பி சாத்தி ஜோ உன்கே ஹை, தோடே நாம் லே ரா ஹூ. கல் டாக்டர் பிரேம் மசந்த் பி ஆப்கா கிளாஸ் லேங்கே. ஹரேக் கே அந்தர் ஏக் பஹுத் லகன் ஹை. கோய் பி காரிய பினா லகன் கே சஃல் நீ ஹோத்தா. தூசரி பாத், அகர் கோய் பாத்தே ஹம் தாரண கர்த்தே ஹை தோ ஹமாரே சாமனே கோய் நா கோய் எக்ஸாம்பல் ஹோத்தா ஹை, கோய் ஐடியல் ஹோத்தா ஹை. तो मैं सोच रहा था कि हाउ फॉर्चुनेट आई हैव बीन, 20 साल की उम्र में ये ईश्वरी ज्ञान मुझे मिला और मैं उस समय जो हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के फाउंडिंग சோல்ஸ் கேன் பிதாஸ்ரீ பிரம்மா பாபா மாதேஸ்வரி சரஸ்வதி படி பகனே ஜின்கோ தாதியா கேத்தே ஹை, தாதி பிரகாஷ்மணி, தீதி மன்மோகினி, தாதி ஜானகி ஜி, தாதி குல்ஜார் ஜி, தாதி ரத்னமோகினி ஜி, கல் ஆப்சே மில்கே கே. और जिस बहन ने हमें ज्ञान दिया वो अभी गांधी धाम में है. एक एक को जब मैं देखता था तो मुझे बहुत उमंग आता था, जितना हो सके उनसे मैं सीखूं. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर प्रोफेशनली जरूर मैंने स्टडी की, बाद में एक्टिव सर्विस में भी रहा इंडियन नेवी में 5 साल के लिए, लेकिन मेरी रुचि अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ज्यादा ध्यान जाता था. ये नहीं कि मैं अपना प्रोफेशन کا کام نہ کروں، بلکہ یہ دیکھا کہ جتنا مجھے آدھیاتمک روچی تھی وہ 13 سال کی عمر سے تھی، 13 سال کی عمر سے کتابیں پڑھنی شروع کی تھی، سوامی رام تیرتھ، سوامی وویکانند، گاندھی جی کی کتابیں، لیکن پریکٹیکل سائیڈ میں بہت مشکل لگتا تھا، ایڈجسٹمنٹس میں بہت مشکل لگتا تھا، پر جیسے یہ ایشوری گیان ملا سمجھ میں آیا ہم کون ہیں، اس کی گہرائی میں گئے۔ چوتھے دن ہی مجھے جب کورس کیا تھا پہلے 7 دن کا، چوتھے دن ہی میڈیٹیشن میں بہت اچھا انبھو ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جو میڈیٹیشن کرانے والی بہن ہے وہ کوئی فرشتہ سامنے بیٹھا ہے، حالانکہ بہت سمپل سا انہوں نے لیسن میڈیٹیشن کا دیا تھا کہ من میں اتنا ہی سوچنا کہ میں شدھ آتما شانت سوروپ ہوں، شانتی کے ساگر پتا پرماتما کی سنتان ہوں، میں آتما شانت سوروپ، لیکن دھیرے دھیرے سوچنا اور اس کو فیل کرنا۔ اس کے بعد ایک دن جو بیتا اس میں تو میں یوں کہوں گا کہ وہ 7 دن نہیں لیکن 15 دن لگے تھے، دیٹ واز دا موسٹ انلائٹنگ ٹائم فار می۔ بہت ساری فلاسفیکل بکس پڑھنے کے بعد بھی ان چیزوں کا گیان نہیں ملا تھا، اور اس کے 15 دن پورا ہونے کے بعد آپ کو آشچریہ ہوگا، ہم نے جب ایشوری مہا واکیہ سنے جس کو ہم لوگ گیان مرلی کہتے ہیں، اس میں ڈائریکٹ پتا پرماتما شیو نے برہما بابا کے دوارا کچھ ایسے مہا واکیہ اچارے ہوئے تھے کہ اگر بچے چاہیں تو شیو بابا کے اور برہما بابا پتر لکھ سکتے ہیں، میں نے جب نیوی جوائن کی تھی اور ہم بوائز میں تھے وشاکھاپٹنم میں، تو بملی پٹم پکنک پر گئے تھے اور وہاں سمندر اور ندی کا سنگم ہے، اس میں نہانے گئے تھے، اس سمے ایک لڑکے نے بہت اچھا گیت گایا تھا، بھگوان تجھے میں خط لکھتا پر تیرا پتہ معلوم نہیں۔ جب یہ مہا واکیہ ہم نے سنے کہ بچے چاہیں تو شیو بابا کو پتر لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو ایسا موقع ملے تو کیا کریں گے، کیا کریں گے، دل ہوگی لکھنے کی، وہی ایک بار لکھ کے تو دیکھیں۔ حالانکہ اندر سے وشواس نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک امنگ آیا کہ لکھ کے دیکھو۔ دوسرے دن پتر لکھ کر کے لے گئے، अपना परिचय लिखा, 15 दिन में हमने क्या सुना है, क्या समझा है, क्या लक्ष्य उससे मिला है हमें जीवन का, और इस तरह से परिचय का एक पत्र पहला वो लिख के बहन जी को दिया कि ये आप शिव बाबा को भेज दीजिए। उन्होंने यहां पर भेजा माउंट आबू में, क्योंकि उस समय पिता श्री ब्रह्मा बाबा आबू में थे। थोड़े दिन के बाद उस पत्र का उत्तर आया, आप जाएंगे यहां भी बाबा के कमरे में जाएंगे मधुबन में और बाबा की झोपड़ी में जाएंगे, तो वहां बाबा कैसे पत्र लिखते थे लाल पेंसिल से, इस तरह से वो लाल पेंसिल से लिखा हुआ था, उर्दू स्क्रिप्ट थी। नूरे रतन निर्वैर शेर प्रति, मेरा नाम लौकिक निर्वैर सिंह है, याद प्यार पत्र बच्चे का पाया हर्ष आया। अब जब बेहद के पिता को पहचाना है तो उनसे 21 जन्म के लिए सत्युगी दैवी स्वराज का ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना है सहज राजयोग बल से। एक दिन बाप और बच्चे सन्मुख मिलेंगे। बाबा ने पहले से भविष्यवाणी की और याद प्यार अपने दोस्तों को देना। ऐसा पत्र लौकिक पिताजी का या बड़े भाई साहब का कभी नहीं ऐसा मिला था जैसा बाबा का लिखा हुआ था। उसके बाद हमने दूसरा लेटर लिखा, तीसरा लिखा, जवाब मिलते रहे। मिलने का समय हमें पहले मातेश्वरी जी से मिला बॉम्बे में और 6 महीने के बाद यहां आबू में आकर के ब्रह्मा बाबा से मिले। बाबा ने पहले एक शब्द बात नहीं की। मैं एक लक्ष्य लेके आया था कि मुझे जो बहनों ने बताया है वो अनुभव करना है कि शिव बाबा इनके तन में आकर के हम बच्चों से मिलते हैं, मिलते हैं तो क्या उस समय अनुभव होता है। परमात्मा के गुण तो हमने सुने थे, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, वो फील होने चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा 10-12 मिनट कोई बात नहीं की हम लोगों ने, पर बाबा बहुत प्यार से सामने दृष्टि दे रहे थे और उस समय का जो वाइब्रेशन उनके मस्तक पे जो लाइट, उसके फलस्वरूप मैं स्वयं, जैसे संघ का रंग कहते हैं, स्वयं को रियलाइज किया। सेल्फ रियलाइजेशन क्या होती है वो उस समय मैंने अनुभव किया। आत्मा कितनी अंदर अंदर शांत, सचमुच शांत स्वरूप है और कितना अंदर अतीन्द्रिय सुख फील होता है जब ऐसे संग में होते हैं। ईश्वरी संग में उसके रंग में कितना आनंद आता है वो मैंने उस समय अनुभव किया। और एक निश्चय पक्का हुआ सचमुच शिव बाबा मेरे आप सन्मुख हैं, आज से ये जीवन आपके सेवार्थ रहेगी। उसके बाद बाबा ने हम बच्चों से बात की, हम तीन दोस्त आए थे उस समय मिलने बाबा से, और तब से लेकर के आपको ये खुशी हो रही बताने में, तब से लेकर के आज दिन तक ईश्वरीय ज्ञान की जो वाणी है, पहले मेडिटेशन और उसके बाद वाणी, उसका अध्ययन 55 साल में कभी भी मिस नहीं किया। उसका कारण क्या है कि एक तो ब्रह्मा बाबा का अपना एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसा था कि लौकिक दुनिया में हाईएस्ट जितना कोई जा सकता है कमाई के हिसाब से, संबंधों के हिसाब से, उनके प्रोफेशनल लाइफ के कारण, डायमंड मर्चेंट थे, राजाओं महाराजाओं के साथ, इतने तक के क्वीन एलिजाबेथ टू के लिए उन्होंने डायमंड नेकलेस बनाया था, जो आज भी वहां पर उनका जो म्यूजियम है उसमें है। टावर ऑफ लंदन उसको कहते हैं मेरे ख्याल में, देखा है, मैं खुद भी वहां गया था तो देख के आया था। वो सब कुछ होते हुए भी स्वयं ब्रह्मा बाबा कैसे सर्च में थे, एक गुरु किया, दूसरा गुरु किया। 1936 में उनको शिवरात्रि के टाइम पर शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, शिवरात्रि के दिन उनके गुरु का उस समय प्रवचन चल रहा था, 12वां गुरु थे वो। बाबा ने बाद में उनको जाकर के अपनी खुशी जाहिर की कि आपकी दया से मुझे ऐसा आज साक्षात्कार हुआ। गुरु बहुत सच्चाई वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, मेरी कृपा से नहीं, ये उसी सतगुरु की कृपा है। और उसके बाद बाबा ने खोज शुरू की, उसके बाद अपने आप को बिल्कुल ऐसी स्थिति में ले आए कि अपना तन मन धन सारा ही समाज की सेवा में, आध्यात्मिक सेवा में। और वो उस समय गांधी जी पॉलिटिकल मूवमेंट का कार्य कर रहे थे, और बाबा ने देखा कि वास्तव में समाज में आज किस चीज की कमी है, आध्यात्मिक मूल्य गिरते जा रहे हैं। उस बात को लेकर के उन्होंने पहले तो स्वयं अभ्यास शुरू किया, उसके साथ साथ अपने घर में पहले सत्संग शुरू किया, फिर बच्चों का स्कूल शुरू किया, अनेक भाई बहनें उनके साथ मिले, और उसके फलस्वरूप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। जिन लोगों ने उसमें अपना तन मन धन लगाया, 14 साल तक तपस्या करते रहे। आप सोचिए, ऐसी 14 वर्ष तपस्या करने वाली बहनें व भाई, उनसे जब मैं मिलता था, बॉम्बे की बात कर रहा हूं, उनका कुछ बोलने का दृष्टि का सामने समझाने का दुनिया से अलग एक जीवन और बहुत मीठा लगता था, बहुत खींचता था। तो उसकी गहराई में गया मैं कि कारण क्या है, और समझ में आया कि वास्तव में हम सर्व आत्माओं के निजी जो संस्कार हैं वो पिता परमात्मा के समान है। परमात्मा को अगर शांति का सागर कहते हैं तो हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, लेकिन वो सदा स्मृति नहीं रही, विस्मृत हो गए। और उसके कारण क्या हुआ है, नेगेटिविटी ने हमें ओवरपावर कर लिया। फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आने के लिए, और वो भी क्यों, हर बात का एक सवाल उठता है भी क्यों करना है ऐसे, वो इसलिए कि हम अपनी खोई हुई विरासत कहो, खोया हुआ अंदर का आत्मिक सुख कहो, आनंद कहो, उसके अनुभव में वापस आए, चाहे कहां पर भी हैं, किस भी प्रोफेशन में है। और उसकी एप्लीकेशन हमारे लाइफ में हो, तब देखें उसका आनंद क्या है। और उसमें कुछ बातें छोटी छोटी हैं, एक तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये प्रैक्टिकल देखा, चाहे साकार ब्रह्मा बाबा में, मम्मा में, या बहनों भाइयों में, और उनके चेहरे पर जो आध्यात्मिक खुमारी कहो, उनके नैनों में जो चमक कहो, वो दुनिया में कहीं नहीं दिखती थी, क्योंकि उनके अंदर वो निश्चल निस्वार्थ ईश्वरी प्रेम सबके प्रति था। और उसके लिए उनको देखा कि साइलेंस का बहुत अभ्यास करते। ब्रह्मा बाबा ने अपने महावाक्यों में एक बात कही कि बच्चे जब आप 8 घंटा अटेंशन रखेंगे तो संस्कार परिवर्तन हो, संस्कार परिवर्तन होंगे तो अंदर की शांति और अंदर का सुख आपको नेचुरल अनुभव होगा। कारण ईश्वरी याद की शक्ति से पहले तो आत्मा स्वस्वरूप में स्थित होती है, फिर उसके साथ साथ उसका जो पुराना हिसाब किताब है वो खत्म होता है, और उसके साथ में मनोबल बढ़ता है कि मैं राइटियस ही कार्य करूं, अनराइटियस नहीं करूं। जिस बात से मुझे अंदर का सुख खत्म हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, मेरी नींद उड़ जाती है, उस बात को खत्म कर दो। आजकल बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं, जैन समाज का मैं पढ़ रहा था, पर्युषण के दिन एक दो को क्षमा करते हैं, सारे वर्ष में अगर कोई मेरे से आपको कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करना, ऐसे औरों का भी सुनते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी अपने रोजे रख करके वो भी अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं, और हमारा भारत के भारतवासियों के लिए कौन सा मास चल रहा है? हाँ? श्रावण मास। तो श्रावण मास में क्या कहते हैं? कहते हैं थोड़ा सा भी शिव के प्रति भावना रखो, जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, शिव खुश हो जाते हैं और जो आपकी मन इच्छित बातें, अभी और क्या मन इच्छित बातें करेंगे, आपके पास तन बहुत तंदुरुस्त है, दूसरों की सेवा करते हैं, मन इतना अच्छा श्रेष्ठ है, धन भी उसकी कोई कमी नहीं है, फिर और क्या चाहिए? तो इस मास में बहुत अच्छा है कि इस मास में आपकी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इस मास में अगर हम इस बात को जान लें कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट एनलाइटेंड। शिवानी बहन का आपने लेक्चर सुना, अच्छा लगा ना? सुनते हुए जैसे अच्छा लगता है, अगर आप प्रैक्टिकल में लाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो सदा आनंदित रहने के लिए, सदा खुशनुमा रहने के लिए, और सदा अपने आसपास का वायुमंडल, अपने घर का, बच्चों का, सबका, उसके दो तीन बातें थोड़ी मन में पक्की करनी पड़ती। गिरीश भाई मेरे परिचय में एक बात कह रहे थे, डांटने की बात। पेरेंट्स अपना एक अधिकार समझते हैं बच्चों को डांटने का, ऐसा है कि इनको सुधारने के लिए डांटना जरूरी है? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। ब्रह्मा बाबा को देखा, कभी भी किसी बच्चे को डांटते नहीं थे। हम सब उनके बच्चे हैं ना, भूलें तो होती हैं, कोई एकदम जन्म से जाम तो नहीं बन जाता है, एकदम से तो सब एनलाइटेंड नहीं हो जाते हैं, एकदम से अपनी वीकनेसेस को छोड़ नहीं सकते हैं, कोई ना कोई भूल होती है। बाबा बहुत प्यार से कहते थे, बच्चे आगे के लिए ध्यान रखना, बस जो बीत गया उसका प्रायश्चित करो, छोड़ो उसको, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखना। और उसमें इतनी शक्ति बाबा के शब्दों में थी कि मन होता था कि बाबा ने जो कहा है, बड़ी बहनें भाई भी इसी तरह से कभी भी जो बैठ करके लंबी चौड़ी बात में जाएं, किसकी खिंचाई करें, वो नहीं करते थे। और मैंने अपने लाइफ में छोटे बच्चों से सीखा, मैं आपको बता देता हूं, हालांकि मैं बैचलर हूं, लेकिन यहां बच्चों के प्रोग्राम हम लोगों ने 1978 से शुरू किए थे। छोटे बच्चे आते थे, जो 8 से 16 साल की उम्र के बच्चे, उन बच्चों से सीखा। आपस में लड़ेंगे, लेकिन उनको प्यार से हम पूछेंगे क्या बात है, एक दो की कंप्लेंट करेंगे, फिर उनसे पूछेंगे अच्छा फिर इनसे अलग रहना चाहेंगे आप? नहीं, इनके साथ ही चाहिए, इनके साथ ही खेलना है। तो फिर तो इनके साथ खेलना है तो फिर थोड़ा आपको भी त्याग करना पड़ेगा। गाली निकालना बंद कर सकते हो? बच्चे कहेंगे कोशिश करूंगा। बच्चे हैं ना, एक बार एक बच्चे को थोड़ा सा मैंने आंख दिखाई, बोला कुछ नहीं, उसके इतने मोटे मोटे आंसू बहने लग गए। आज से मैं समझता हूं 30 साल पहले की बात है, ये यहां की बात है, माउंट आबू की बात है। उसको बहुत प्यार से ऐसे गोद में लिया और अपने मन में एक निश्चय किया कि आज के बाद किसी बच्चे को मैं डांटूंगा नहीं। वो दिन आज दिन तक कभी डांटा नहीं किसी। क्यों? हमें कार्य वो करना है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, वो विश्व कल्याणकारी है, तो विश्व कल्याणकारी के बच्चे भी मास्टर विश्व कल्याणकारी है। हमारा फर्ज है हम अपने जीवन में ऐसी धारणा बनाएं जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाए, और उसका एक ही तरीका है, उसमें क्या करना पड़ेगा। हम लोग रेजोल्यूशन तो कई पास कर लेते हैं, प्रैक्टिकल में जब लाना होता तो क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसके लिए दृढ़ता की शक्ति अपने में भरनी जरूरी है, दृढ़ता की। लेकिन दृढ़ता दूसरों के साथ नहीं, दूसरों के साथ नरम रहना जरूरी है, स्वयं के साथ दृढ़ रहना जरूरी है। तो मेडिटेशन में जब हम मेडिटेशन करते हैं, उसमें आप देखेंगे धीरे धीरे आपके मन में आने लगेगा, जितना हो सके मैं गहराई में जाऊं, साइलेंस में जाऊं। और अगर आप साइलेंस की शक्ति को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वी हैव सो मच ट्रेजर ऑफ इनर पीस, इतनी गहराई में जा सकते हैं कि आप कहीं पर बैठे भी आपकी साइलेंस की शक्ति से सारे विश्व को शांति प्रदान कर सकते। कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं उस समय, भाई 2 मिनट साइलेंस करो उस आत्मा को शांति देने के लिए। आप लोगों ने की होगी ना ऐसे कई बार ऑब्जर्व, 2 मिनट जरा उसको रिफ्लेक्ट कीजिए माइंड में, वो 2 मिनट साइलेंस में होते हैं आप, या कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं। तो इसका सहज तरीका क्या है साइलेंस का, कि एक तो अपने सामने शिव बाबा को विजुलाइज करिए जो शांति का सागर है, और स्वयं को उनकी संतान होने के नाते, अंग्रेजी शब्द है मास्टर भी शब्द यूज कर सकते हैं, बच्चे को मास्टर कहते हैं, मास्टर शांति के सागर हैं, उसकी गहराई में जाएं, उसको फील करें, उसको रिफ्लेक्ट करें, उसको मैग्नीफाई करें, मल्टीप्लाई करें, और फिर उसके बाद देखें कि उस से कितना अंदर ही अंदर आपको सुख फील होता। विश्व को शांति देने का एक सहज तरीका है ये, और वो आता ही है जब हम सारी बातों को छोड़ करके और बातों को छोड़ करके बस एक संकल्प रखें, उसको क्या कहते हैं आप, कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। तो एक है कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन में स्वयं को एक ज्योति स्वरूप लाइट समझकर, परमात्मा को ज्योति स्वरूप लाइट समझकर विजुलाइज कर। दूसरा है उसके साथ जो परमात्मा पिता के गुण हैं उसका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मन में मंथन करना। और अगर आप परमात्मा से डायरेक्ट संबंध अपना जोड़ लें, परमात्मा पिता से थोड़ा डायलॉग शुरू कर दें कि आप शांति के सागर पिता हैं, आपकी संतान, मैं आत्मा शांत स्वरूप, आप प्रेम के सागर पिता हैं, मैं आत्मा आपकी संतान प्रेम स्वरूप हूं। आप आनंद के सागर पिता हैं, आपकी संतान मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। ये धीरे धीरे मन में सोचते उसका स्वरूप बन के देखो, इतना अंदर ही अंदर आपको शांति का अनुभव होगा, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं कहीं। और उसमें थोड़ा सा समय देते रहेंगे तो इट विल कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई और उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी मिलेगी। अपने व्यवहार के अंदर शुद्धि आ जाती है, शांति आ जाती है, और जहां भी आप अपने घर में या अपने हॉस्पिटल में ऑफिस में जहां भी होंगे वहां का वायुमंडल सारा इतना पीसफुल हो जाएगा। और आप देखो कि जितना मन पीसफुल होता है उतनी क्लैरिटी आती है माइंड में, आपकी पावर ऑफ जजमेंट बढ़ जाएगी, क्विक डिसीजंस ले सकेंगे। बहुत सारी उसकी रिजल्ट्स मिलती हैं। तो अभी क्या करेंगे, चलेंगे थोड़ा टाइम उस स्थिति में चले, लेट्स ट्राई, सीधे बैठ जाएं थोड़ा। नेचुरली आंखें खुली रखनी है, नेचुरली, स्ट्रेन नहीं करनी है, ना आंख बंद करनी है, ना एकदम वो जो त्राटक योग की बात करते वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कैसे नेचुरल आंखें खुली हैं, ऐसे ही शिव बाबा के साथ डायलॉग करनी, परमात्मा पिता के साथ और किसी से नहीं। थोड़ा लाइट चेंज इसलिए करते हैं कि अपने मन को इस दुनिया से थोड़ा ऊपर ले चले। हम आत्माएं परमधाम से यहां आए हैं, फिर वापस परमधाम में जाएंगे जो चांद सूर्य तारागण से परे है। तो अपने आप को विजुलाइज करते हैं कि हम जब परमधाम निवासी हैं तो आत्मा अपने संपन्न स्वरूप में है, पिता के समान शांति के सागर पिता के साथ अपने शांत स्वरूप में स्थित मास्टर शांति के सागर हम आत्माएं फिर से अपने सत्य स्वरूप में स्वयं को वापस लाते। शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान, अनादि और अविनाशी संतान मैं आत्मा, उनके शांति के सागर स्वरूप को अपने हृदय पटल पर मन के तीसरे नेत्र से देखते हुए महसूस करता हूं, सचमुच मैं आत्मा कितना शांत स्वरूप, शांति के सागर, पिता के संग के रंग में रंगा हुआ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। ऐसा शांति का शुभ संकल्प, ये उस प्रेम के सागर पिता का सच्चा प्रेम हम आत्माओं के प्रति है, जो हमें आप समान फिर से शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप के अनुभव में ले जा रहे हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप हूं। प्रेम स्वरूप का प्रत्यक्ष फल आनंद के सागर पिता परमात्मा के सानिध्य में आनंद की अनुभूति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप। ओम शांति।